वृहत क्षत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से साल्व देश की ओर जा रहा था। खूब रासी ठाट बाट के साथ रथ में बैठा हुआ था। उसके साथ अनेकों राजा थे, उन सब के साथ वह काम्यक वन में आया। वहां निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर पांडवों की प्यारी पत्नी द्रौपदी खड़ी थी। वो पांडवों की प्रतीक्षा में खड़ी थी। जयद्रथ की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी अनुपम सुंदरी थी। उसका श्याम शरीर एक दिव्य तेज से दमक रहा था। आश्रम के निकट वन का भाग उसकी कांति से प्रकाशमान हो रहा था। जयद्रथ के सारथियों ने उस अनिंद्य सुंदरी की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए और मन ही मन तर्क करने लगे, यह कोई दिव्य स्त्री है, या तो कोई अप्सरा है, या देवकन्या है, या देवताओं की कोई माया है, इनको प्रणाम है। परंतु सिंधुराज जयद्रथ उस सुंदरांगी को देखकर चकित रह गया। उसके मन में बड़े बुरे बुरे विचार उठे। वह काम से मोहित हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटिकास्य से कहा, ए कौटिक, जरा जाकर पता लगाओ ये सर्वांग सुंदरी किसकी है, कौन है, यह मनुष्य जाति की स्त्री है या नहीं है। यदि ये मिल जाए तो मुझे विवाह की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। पूछो तो ये कौन है, कहां से आई है, इस कंटीले जंगल में क्यों रहती है, इस किसके साथ रहती है, क्या ये मेरे साथ सेवा, क्या ये मेरी सेवा स्वीकार करेगी। मैं तो इसको पाकर कृतार्थ हो जाऊंगा, ये जाकर उसको सुना दो। सिंधुराज के वचन सुनकर कोटिक रथ से नीचे उतरकर गीदड़ जैसे सिंगनी से बात करे, उस प्रकार दुबके 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 जाकर टूटे टूटे शब्दों में द्रौपदी के पास जाकर बोला, सुंदरी, कदंब की डाली झुकाकर इसके सहारे इस आश्रम पर अकेली खड़ी हुई तुम कौन हो, तुझे इस भयानक जंगल में डर नहीं लगता, क्या तू किसी देव यक्ष या दानव की पत्नी है, अथवा कोई श्रेष्ठ अप्सरा या नागकन्या है, यमराज चंद्रमा वरुण और कुबेर इनमें से तू किसकी पत्नी नहीं है, बता, धाता विधाता सविता विष्णु या इंद्र किसके धाम से तू यहां आई है। मैं राजा सुरथ का पुत्र हूं, लोग मुझे कोटिकास्य कहते हैं, तथा सौवीर देश के 12 राजकुमार हाथ में ध्वजा लेकर जिनके रथ के पीछे चल रहे हैं 6,000 रथी, हाथी, घोड़े, पैदल की सेना जिनका अनुसरण करती हैं, वे सौवीर देश के महाराज जयद्रथ वहां खड़े हैं। उनका नाम कभी आपने सुना होगा। इनके साथ और भी कई राजा हैं। अपना परिचय तो हमने बता दिया, पर तेरे विषय में अभी हम अनभिज्ञ हैं, बता तू किसकी पत्नी और किसकी पुत्री है। कोटिकास्य के प्रश्न करने पर द्रौपदी ने एक बार धीरे से उसकी ओर देखा, आंखों के अंदर क्रोध भरा हुआ था और डाली का सहारा छोड़कर अपनी रेशमी चद्दर को संभालते हुए नीची दृष्टि करके कहा, राजकुमार, मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर अच्छी तरह समझ लिया है कि तुम मेरी जैसी स्त्री को तुमसे बातचीत करना उचित मालूम नहीं देता। यह मेरी शान के विरुद्ध बात है कि मैं तुम जैसों से बात करूं, पर यहां इस समय दूसरा कोई पुरुष या स्त्री मौजूद नहीं है कि जिसके सहारे से मैं अपने मन की बात तुम्हारे तक कहलवा दूं, इसलिए मुझे खुद ही बोलना पड़ रहा है। मैं अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री हूं, सो भी इस समय अकेली हूं। इस वन में अकेले तुम्हारे साथ कैसे बात कर सकती हूं? परंतु मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूं कि तुम राजा सूरत के पुत्र हो, तुम्हारा नाम कोटिकास्य है, इसलिए तुमसे अपने बंधुओं और विख्यात वंश का परिचय दे रही हूं। शायद आपने कभी राजा द्रुपद का नाम सुना होगा। उस द्रुपद की पुत्री हूं, मेरा नाम द्रौपदी है, मुझे कृष्णा भी कहते हैं। पांचों पांडवों के साथ मेरा विवाह हुआ है, वे इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, उनका नाम तुमने जरूर सुना होगा, और उस राजसू यज्ञ में तुम आए थे, इस बात का मुझे पूरा ज्ञान है। और अब आप लोग अपने वाहन खोलकर यहां उतर जाओ, पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करो, उनसे मिलो, फिर तुम यहां से जाना। उनके आने का समय बस अब हो ही रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर अतिथियों का बहुत सम्मान करते हैं और आप लोगों को देखकर बड़े प्रसन्न होंगे। द्रौपदी इतना कहकर अपनी पर्णकुटी में चली गई और उन लोगों पर विश्वास हो गया, अतः उनके आतिथ्य सत्कार की तैयारी में लग गए। कोटिकास्य उन राजाओं के पास गया, द्रौपदी के साथ जो बात हुई वो सब सुनाई। उनकी बातों को सुनकर के दुष्ट जयद्रथ ने कहा, अच्छा ये वो द्रौपदी है, ठीक है कोटिकास्य, अब हम स्वयं द्रौपदी के पास जाते हैं, द्रौपदी को देखता हूं। वह अपने छह भाइयों के साथ में लेकर जैसे भेड़िया सिंह की गुफा में प्रवेश करे, इस प्रकार वह जयद्रथ पांडवों के आश्रम में घुस गया और द्रौपदी से बोला, सुंदरी तुम कुशल से तो हो ना, तुम्हारे स्वामी स्वस्थ तो है ना, तथा और जिन लोगों की तुम कुशल कामना रखती हो वे सब तो कुशल है ना। द्रौपदी ने कहा, राजकुमार तुम स्वयं कुशल हो कि नहीं ये बताओ। मेरे पति कुरुवंशी महाराज युधिष्ठिर सकुशल हैं, उनके भाई भी सकुशल हैं। यह पैर धोने के लिए जल और आसन ग्रहण करो, और अभी वे हमारे पतिदेव आने वाले हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करो, यहीं बैठे रहो। जयद्रथ बोला, मेरी तो खूब कुशल क्षेम है, जलपान करने के लिए तुम जो कुछ देना चाहती हो सब मुझे प्राप्त हो चुका है। मैं तुमसे एक बात कहता हूं द्रौपदी, अब पांडवों के पास रखा ही क्या है, न उनके पास धन रहा, राज्य से निकाल दिए गए, क्यों इस जंगल के अंदर पड़ी कष्ट पाती हो, ऐसी सेवा करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है। इतनी भक्ति से जो तुम इनकी सेवा करती हो उसका फल तो केवल दुख और क्लेश ही तो होगा ना, तुम इन पांडवों को छोड़ दो और द्रौपदी मेरी ओर देखो, मेरी पत्नी हो जाओ, राजरानी हो जाओगी, मेरे साथ संपूर्ण सिंधु और सौवीर देश का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा, रानी बनोगी, यहां वनवास में क्या रखा है। ये बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में वैसे ही कंपन हुआ जैसे बदलों में बिजली चमकती है। सहसा उस स्थान से उठ खड़ी हुई, पीछे हट गई और द्रौपदी ने बहुत कड़वी कड़वी बातें सुनाई, और खबरदार फिर कभी ऐसी बात मुंह से निकालेगा, शर्म आनी चाहिए। एक तरफ मेरे पतियों को तुम जानते भी हो और दूसरी तरफ तुम उनको ओछा भी बताते हो। मेरे पति महान यशस्वी हैं, धर्म में स्थित रहने वाले हैं, युद्ध में यक्षों राक्षसों का भी मुकाबला कर सकते हैं, ऐसे मारथी वीरों की शान के खिलाफ ओछी बातें कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती मूर्ख? जैसे बांस केला और नरकुल ये फल देकर अपना नाश कर लेते हैं, केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए गर्भ धारण करती है उसी प्रकार तू भी अपनी मौत के लिए मेरे से ऐसी बातें करता है। जयद्रथ बोला, कृष्ण मैं तुमसे इतनी प्रेम से बात करता हूं और तुम इतनी नाराजगी दिखाते हो। ओ, मैं सब जानता हूं, मुझे खूब मालूम है तुम्हारे पति राजपुत्र पांडव कैसे हैं, परंतु इस समय यह विभीषिका दिखाकर, ये डर दिखाकर तुम हमें डरा नहीं सकती। हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। अब तुम्हारे सामने दो काम है, या तो सीधी तरह से हाथी या रथ पर चढ़कर हमारे देश में राजरानी बनकर रहो, या फिर पांडवों के हार जाने पर सौबीर राज जयद्रथ से दीनता पूर्वक गिड़गिड़ाते हुए कृपा की भीख मांग लेना। उस समय आओगी तो पहले ही आओ। द्रौपदी ने कहा, छी छी छी, मेरा बल, मेरी शक्ति, तुम्हारे दुर्बलों, तुम्हारे जैसे सौवीर राज की दृष्टि में दुर्बल प्रतीत हो रही हूं, तुम्हें सामने मेरी शक्ति नहीं दिखती। मुझे अपने पर विश्वास है, ये जोर जबरदस्ती करने से जयद्रथ मैं कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक रथ पर एक साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी हरकर नहीं ले जा सकता। मूर्ख, तुम्हारे जैसे मूर्खों की तो ताकत ही क्या है। अर्जुन जब शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने लगते हैं, उस समय दुश्मनों का दिल दहल जाता है। वे मेरे लिए आकर तेरी सेना को चारों ओर से घेर लेंगे और गर्मी के दिनों में आग जैसे तिनकों को जलाती है वैसे तुम्हारी सेना को भस्म कर डालेंगे। उनके गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण समूह टिड्डियों की तरह वेग से उड़कर तुम्हारे सैनिकों पर प्रहार करेंगे। पराक्रमी वीर अर्जुन पर तेरी दृष्टि पड़े बस इतनी ही देरी है। उस समय अपने कुकर्म को याद करके तू अपनी बुद्धि को धिक्कारेगा कि कहां मैं द्रौपदी के पास आ गया। नीच, भीम की गदा को तो जानता नहीं है क्या? नकुल और सहदेव के क्रोध जन्य जहर उगलते हुए तलवारों को तू भूल गया है? तुझे याद नहीं है? तू आगे पश्चाताप करेगा, इससे अभी पश्चाताप कर ले, चला जाए यहां से। यदि मैंने अपने मन से अपने पूजनीय पतियों का उल्लंघन नहीं किया है और यदि मेरा अखंड पातिवृत्य सुरक्षित है तो इस सत्य के प्रभाव से आज देखूंगी कि पांडव तुझे जीतकर अपने वश में करके जमीन पर घसीट रहे हैं कि नहीं। मैं जानती हूं तू निशंस है, तू मुझे बलपूर्वक खींच करके ले जा भी सकता है, मगर इसके परिणाम पर विचार करना। मेरे पति कुरुवंशी वीर शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और उनके साथ मैं पुनः इसी काम्यक वन में आकर रहूंगी। तदनंतर द्रौपदी ने देखा, जयद्रथ के आदमी मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। पीछे हटी, डांटकर बोली, खबरदार, मुझे किसी ने हाथ लगाया तो। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित सौधौम्य मुनि को पुकारा। तब तक जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी के दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। द्रौपदी ने उसे जोर से धक्का दिया। धक्का लगते ही पापी जयद्रथ जड़ से कटे हुए वृक्ष के भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और फिर बड़े वेग से उठकर उसने द्रौपदी का दुपट्टा पकड़ लिया और उसे जोर जोर से खींचने लगा। द्रौपदी बारंबार उच्छ्वास लेने लगी और उसने जैसे तैसे धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और वो रथ पर लेकर चला गया। धौम्य बोली, जयद्रथ, जरा क्षत्रियों के प्राचीन धर्म का ख्याल कर। महारथी पांडव वीरों पर विजय प्राप्त किए बिना इसे ले जाने का तुम्हें क्या अधिकार है? पापी धर्मराज आदि पांडवों से मुठभेड़ हो जाने पर तुझे इस नीच कर्म का फल न मिले तो हम भी धौम्य ऋषि नहीं है। धौम्य ऋषि की कोई परवाह नहीं की। द्रौपदी बिचारी धौम्य ऋषि को देखती रही। ऋषि आंखों में जल लिए खड़े रहे, विवश थे, कुछ कर नहीं सकते थे। द्रौपदी को रथ में बैठा लिया गया। पैदल सेना चारों तरफ उस रथ की रक्षा कर रही है। जयद्रथ उसको ले गया। जब पांडव वन में से आश्रम की ओर लौट रहे थे उस समय गीदड़ जोर जोर से रोते हुए वाम भाग से निकले। यह अपशकुन देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा, यह गीदड़ हम लोगों के बाईं ओर आकर रोता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने कोई न कोई महान उपद्रव किया है। चले आश्रम पर जाए देखते हैं। आश्रम पर आकर देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्री का जोर जोर से रो रही थी। उसे उस अवस्था में देखकर इंद्रसेन सारथी रथ से उतर पड़ा। दौड़ते हुए उसके पास आकर बोला, तू इस तरह धरती पर पड़ी पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुंह सूखा हुआ है, दीन हो रहा है। इन निर्दयी और पापी कौरवों ने यहां आकर तुम्हारी राजकुमारी द्रौपदी को कोई कष्ट तो नहीं दिया है ना? वो दाय बोली, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ द्रौपदी को हर ले गया है। देखो अभी उसके रथ के लीके जमीन पर उसकी साक्षी है और सैनिकों के पैरों के चिन्ह भी यहां बने हुए हैं। अभी राजकुमारी शायद ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी रथ लौटाओ, जयद्रथ का पीछा करो और महारानी द्रौपदी को लेकर आओ। अधिक देर मत करो। पांडव बार बार क्रुद्ध सांप की तरह फुंकार छोड़ते हुए अपने धनुष का टंकार करते हुए उसी मार्ग से चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर जयद्रथ के फौज के घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ी। उन्होंने पैदल सेना के बीच में जाते हुए धौम्य मुनि को भी देखा जो भीम को पुकार रहे थे। पांडवों ने मुनि को आश्वासन दिया, आप सुखपूर्वक चलिए। फिर जब उन्होंने एक ही रथ में अपनी प्रियतमा द्रौपदी और जयद्रथ को बैठा देखा तो उनके क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब ने जयद्रथ को ललकारा। पांडवों को आया देखकर शत्रुओं के होश उड़ गए। पैदल सेना तो बहुत डर गई। सारी पैदल सेना खड़ी होकर पांडवों के सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। पांडवों ने कहा, कोई बात नहीं, शरण में ही आ गए, तुम्हारी रक्षा है, जाओ, तुमको छोड़ दिया। जो उनकी शरण में नहीं आए उनको चारों तरफ बाणों से घेर लिया, जाओ किधर से निकलते हो। तब सिंधुराज ने अपने साथ के राजाओं को उत्साहित करते हुए कहा, शत्रुओं के मुकाबले में डटकर खड़े हो जाओ, मारो। फिर उस युद्ध में महान कोलाहल हुआ। शिवी सौवीर और सिंधु देश के अनेक महाबलवान व्याघ्र के समान भीम अर्जुन जैसे उत्कट वीरों को देखकर दहल उठे, हृदय में विषाद हुआ। भीम पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे लेकिन भीम पर्वत की तरह अडिग रहे, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जयद्रथ की सेना के अग्रभाग में स्थित सवार सहित एक हाथी और 14 पैदलों को एक ही गदा के प्रहार से मार दिया। अर्जुन ने 500 महारथी वीरों का संहार किया। युधिष्ठिर ने 100 योद्धाओं का नाश किया। नकुल ने हाथ में तलवार ले रथ से नीचे कूद पड़ा और शत्रुओं के मस्तकों का इस प्रकार से काटना चालू किया जैसे कोई खेत में खेती के धान को काटा करता है। सहदेव ने अपना रथ हाथी सवारों से भिड़ा दिया और जैसे कोई शिकारी पेड़ पर बैठे हुए मोरों को मार मार कर गिरावे इस प्रकार बाणों से उन्हें गिराने लगा। इतने में त्रिगर्त देश का राजा धनुष लेकर अपने विशाल रथ से नीचे उतर पड़ा। गदा के प्रहार से राजा युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मार डाला। उसको अपने निकट आया देख राजा युधिष्ठिर ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी छाती को चीर दिया। वह खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ गया, मर गया। घोड़े मर जाने से युधिष्ठिर अपने सारथी इंद्रसेन के साथ रथ से उतरकर सहदेव के विशाल रथ पर बैठ गए। भीमसेन ने देखा कि मेरे ऊपर राजा कोटिकाश से चढ़ा आ रहा है। उन्होंने छुर्रा मारकर उसके सारथी का मस्तक काट दिया, किंतु उसे पता तक नहीं चला। सारथी के मर जाने से उसके घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। कोटिकाश को विमुख होकर भागते देख भीम ने प्रास नामक शस्त्र से उसको मार डाला। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सौवीर देश के 12 राजाओं के धनुष और मस्तक काट दिए। उन्होंने शिबी और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का तथा त्रिगर्त और सिंधु देश के नृपतियों का खूब श्रृंगार किया। इन सब वीरों के मारे जाने पर जयद्रथ बहुत डर गया। उसने द्रौपदी को उसी समय रथ से उतार दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए वन की ओर भागने लगा। धर्मराज ने कहा कि धौम्य को आगे करके द्रौपदी आ रही है, तो सहदेव के द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। युद्ध समाप्त होने पर भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया शत्रुओं के प्रधान प्रधान वीर मारे गए, बहुत से भग गए। आप नकुल, सहदेव, महात्मा, धौम्य मुनि के साथ आश्रम में जाइए, द्रौपदी को शांत कीजिए और मैं उस मूर्ख जयद्रथ को आज किसी हालत में जीवित नहीं छोड़ सकता। भले ही वो पताल में जाकर छिप जाए, चाहे इंद्र भी उसका सारथी बनकर आकर सहायता करे। सिंधु सौवीर युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहु भीम, क्रोध शांत करो। यद्यपि सिंधुराज जयद्रथ बड़ा दुष्ट है, तो भी वह हमारा बहनोई है, वह दुष्सला का पति है और जवाई के मरने पर सासू को कितना कष्ट होता है, गांधारी को कितना कष्ट होगा कि मेरी बहन विधवा हो गई। और जब ये पता चलेगा कि भीम ने ही जयद्रथ को मारा है, भीम ने अपनी बहन बहनोई का ही विचार नहीं किया, उस समय अपने लिए बात अच्छी नहीं होगी। इसलिए उसको वश में तो कर लेना, उसको जान से मत मारना, इतनी बात मेरी तुम्हें माननी पड़ेगी। इधर राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित के साथ आश्रम में आ गए। वहां मार्कंडे मुनि तथा बहुत से ब्राह्मण ऋषि द्रौपदी के लिए शोक कर रहे थे। द्रौपदी सहित धर्मराज युधिष्ठिर जब लौटे तो उनके मुख से सिंधु तथा सौवीर देशों के वीरों का पराजय समाचार सुनकर बड़ा हर्ष हुआ। राजा उन ऋषियों के साथ बाहर बैठे, द्रौपदी ने नकुल और सहदेव के साथ आश्रम में प्रवेश किया। इधर भीम और अर्जुन को पता चला कि जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया, तब वे अपने ही हाथों से घोड़ों का हांकते हुए बड़े वेग से दौड़े। यहां अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यपि जयद्रथ 2 मील आगे था, तो भी उन्होंने अभिमंत्रित किए हुए बाण चलाकर उसके घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मरने से जयद्रथ दुखी हुआ और अर्जुन को ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने भाग जाने में अपना उत्साह दिखाया। वो वन में जाकर दौड़ने लगा, कभी इस वृक्ष के पीछे, कभी किसी गुफा की ओर, कभी बड़े वृक्ष के ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे उतरकर दौड़ता है। अर्जुन ने देखा जयद्रथ तो अब भागने में भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। उन्होंने भी उसका पीछा किया और पीछा करते हुए, राजकुमार लौटाओ, तुम्हारा भागना अब उचित नहीं है। क्या इसी बल पर पराई स्त्री को जबरदस्ती ले जाना चाहते थे? क्या इतनी ताकत है? अरे अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़ दिया और तुमको अपने प्राण अच्छे लगे और तुम भगे जा रहे हो, शर्म नहीं आती? अर्जुन के इस प्रकार कहने पर सिंधु सौराज लौटा नहीं, सिंधुराज लौटा नहीं। तब महाबली भीम ने वेग से दौड़कर उसका पीछा किया और कहा, खड़ा रहे। अर्जुन को जयद्रथ पर दया आ गई। उन्होंने कहा, भैया इसे जान से मत मारना। भीम जब दौड़ा, भीम ने जाकर पकड़ लिया और पकड़ करके अब खड़ा रहे, मारने के लिए तैयार। अर्जुन कहा, भैया जान से मत मारना। अर्जुन और भीम दोनों के बीच में जयद्रथ ने अपने आप को देखकर बड़ी घबराहट का अनुभव किया। और फिर सोचने लगा कि अभी भी मैं इनके हाथ से भग जाऊं, तो इधर उधर वो चालाकी से देखने लगा, तेजी से फिर भागने लगा। इधर भीम ने बड़े वेग से दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली और फिर क्रोध में भरे हुए भीम ने उसे ऊपर उठाकर और जमीन पर पटक दिया, उसके ऊपर बैठ गया, उसका कचूमर निकाल दिया, अपनी दोनों कोहनियों से उसको रगड़ना चालू किया, धूली दूषित हो गया। उन्होंने उसका सिर पकड़कर कई चपत लगाए, उसके पीठ में कितनी लातें लगाई, सिर पर भी लात लगाई, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे सैनिकों में से आओ मुझे कोई बचाओ बचाओ। भीमसेन ने दोनों घुटने टेक कर छाती पर चढ़ गए और छाती पर घूंसे मारने लगे। वो बड़ी मुश्किल से उनकी मुक्कों को सहन कर रहा था, अचेत हो गया। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, भीमसेन को पकड़ लिया, कहा भैया दुश्शला के वैधव्य का ख्याल करके महाराज ने जो आज्ञा दी उस पर विचार करो। भीमसेन का मेरा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है, इस नीच पापी ने क्लेश पाने अयोग्य द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है और इसको मालूम है कि द्रौपदी हमारी पत्नी है, तब भी इसने कोई ख्याल नहीं किया मेरे हाथ से जीवित रह जाए, क्या करूं अर्जुन। इधर तो बड़े भाई की आज्ञा है, इधर तुम छोटे भाई भी मुझे बोलते हो, मुझे दोनों की बात भी समझनी है, परंतु मेरा क्रोध शांत नहीं हो रहा है, क्या करूं। अर्जुन ने कहा भीमसेन जी अभी आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, इसके पाप का फल इसको मिल चुका है। इधर भीमसेन ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाणों से मूंड करके पांच चोटियां रख दी और कटु वचनों से उसका तिरस्कार करते हुए कहा मूर्ख, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन, तू राजाओं की सभा में सदा अपने को दास बताया करना, ये कभी मत कहना कि मैं सिंधु सौवीर देश का राजा जयद्रथ हूं, कहना कि मैं एक दास हूं। क्या ये शर्त स्वीकार है? यदि ये शर्त स्वीकार है तो तुझे जीवन दान देता हूं, और यदि शर्त स्वीकार नहीं है तो मैं अभी तेरी मृत्यु करता हूं। जयद्रथ गिड़गिड़ाने लगा, भीमसेन जी आपकी सारी शर्तें मुझे स्वीकार है, आप मुझे प्राण दान दे दो, मैं जी जाऊं बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। धूल से लथपथ हुआ, अचेत हुआ, बार बार उठने की चेष्टा करता है, फिर वो गिर जाता है। भीमसेन ने उसे बांधा और उसको उठा करके रथ पर सामान की तरफ फेंक दिया, पड़ा रहे। फिर अर्जुन को साथ लिए आश्रम पर, युधिष्ठिर के आश्रम पर ले आए उसको। भीमसेन ने जयद्रथ को उसी अवस्था में धर्मराज के सामने उपस्थित किया और धर्मराज जी हंस पड़े, कहा भीम बहुत विचित्र बल है तुम्हारे में, मारा भी नहीं और मार भी दिया, अच्छा अब इसे छोड़ दो। भीम ने कहा द्रौपदी से भी यह बात कह देनी चाहिए, अब ये पापी पांडवों का दास हो चुका है। उस समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा आपने इसका सिर मुंडकर पांच चोटियां रख दी हैं तथा ये महाराज की दासता भी स्वीकार कर चुका है, अब आप इसे छोड़ दीजिए। जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विबल होकर राजा युधिष्ठिर को तथा वहां बैठे हुए सारे मुनियों को अपराधी के समान प्रणाम किया। दयालु राजा ने उसकी ओर देखकर कहा जा, हम तुझे दास भाव से भी मुक्त करते हैं। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे साथी भी वैसे ही नीच हैं। तूने पराई स्त्री को अपनाने की इच्छा की, धिक्कार है जयद्रथ। इसके अलावा और हम तुम्हें क्या कह सकते हैं, भला तेरे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इतना पापी होगा जो ऐसा खोटा कर्म करे। जयद्रथ जा, अब कभी पाप में मन मत लगाना, अपने रथ घोड़े पैदल सब साथ ले जा, हमारे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ, चुपचाप नीचा मुंह किए हुए चला गया। पांडवों से पराजित और अपमानित होने के कारण उसे अपार कष्ट हुआ, अतः अपने निवास स्थान को न जाकर वो हरिद्वार चला गया। वहां भगवान शंकर की शरण होकर उसने बड़ी कड़ी तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हो गए, उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसकी पूजा स्वीकार की और आशुतोष भगवान शंकर ने वर मांगने के लिए कहा। जयद्रथ ने कहा, मैं युद्ध में रथ सहित पांचों पांडवों को जीत लूं, यही वरदान दीजिए। भगवान शंकर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। पांडवों को तो युद्ध में न तो कोई जीत सकता है और न कोई मार सकता है। केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़ शेष चारों पांडवों को युद्ध में पीछे थोड़ा हटा सकते हो, इतना वरदान दे सकता हूं, थोड़ा पीछे हट जाए बस। वो भी अर्जुन को नहीं, अर्जुन को तो तुम नहीं कर सकते। अर्जुन पर तुम्हारा वश इसलिए नहीं चलेगा कि देवताओं के स्वामी भी नर के अवतार हैं, जिन्होंने बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ तपस्या की है। मेरा वरदान भगवान पर नहीं चलता है, उन्हें तो सारा विश्व भी नहीं जीत सकता, देवताओं के लिए तो अजेय हैं। और फिर मैंने उन्हें पाशुपतास्त्र दे रखा है, उसकी तुलना संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अन्य लोकपालों से भी वज्र आदि महान अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर रखे हैं। इस समय दुष्टों के नाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने यदुवंश में अवतार लिया है, उन्हीं को लोग श्री कृष्ण कहते हैं। जयद्रथ आंख फाड़ फाड़ के सुन रहा था। जयद्रथ भी अनादि अनंत अजन्मा परमेश्वर, जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, अंगों पर सुंदर पीतांबर, वे कृष्ण सदा अर्जुन की रक्षा करते हैं। इसलिए अर्जुन को देवता भी नहीं हरा सकते, फिर मनुष्य में कौन है? और फिर तू तो इस तपस्या से पहले महान नीच कर्म किया हुआ है, तेरे पास ताकत भी क्या है? नहीं हरा सकता। ऐसा कहकर पार्वती से भगवान शंकर अंतरित हो गए। मंद बुद्धि राजा जयद्रथ अपने घर को चला गया। पांडव लोग उसी काम्यक वन में निवास करने लगे। जनमेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, द्रौपदी का अपहरण हो जाने पर महान कष्ट उठाने के बाद मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, जैसा कि मैंने बताया, जयद्रथ को जीतकर उसके हाथ से द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठ गए। महर्षि लोग पांडवों पर आए हुए संकट के ऊपर बार बार शोक प्रकट कर रहे थे। उनमें से मार्कंडेय जी को लक्ष्य करके युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, देवर्षियों में आप विख्यात हैं, आपसे मैं अपने हृदय की एक बात पूछना चाहता हूं, उसका निवारण कीजिए। यह सौभाग्यशालिनी द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई, इसे गर्भवास का कष्ट नहीं सहना पड़ा। महात्मा पांडु की पुत्रवधु होने का भी इसे गौरव मिला है। इसने कभी भी पाप या निंदित कर्म नहीं किया है। ये धर्म का तत्व जानती है और पालन भी करती है। ऐसी स्त्री का भी पापी जयद्रथ ने अपहरण किया, ये अपमान हमें देखना पड़ रहा है। सगे संबंधियों से दूर जंगल में रहकर हम तरह तरह का कष्ट भोग रहे हैं। अतः हम आपसे पूछते हैं, आपने हमारे समान मंद भाग्य पुरुष इस जगत में कोई और भी देखा है या सुना है क्या? मार्कंडेय जी बोले, राजन क्यों तुम दूर जाओ? ये बात यदि तुम्हें पूछनी हो तो कृष्ण से पूछो। कृष्ण से क्यों महाराज, आप नहीं जानते? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये कृष्ण ही त्रेता युग में दशरथ नंदन रामचंद्र थे। इन्होंने भी वनवास में और स्त्री वियोग में महान कष्ट उठाया है। उनकी स्त्री को भी दुरात्मा रावण माया जाल बिछाकर हर ले गया था। जटायु ने उसके कार्य में विघ्न डाला, रावण के कार्य में, तो उसने जटायु को मार डाला। फिर रामचंद्र जी सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे बाणों से लंका को भस्म कर सीता को वापस ले आए। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज क्या ये कृष्ण ही रामचंद्र थे? तो क्या है, रामचंद्र ही तो कृष्ण थे, कृष्ण ही तो रामचंद्र हैं। इनमें बिल्कुल भेद मत देखो, तब तो ये चरित्र आपके मुख से हमें अच्छा लगेगा। कृष्ण से ये चरित्र पूछेंगे तो इतना अच्छा नहीं बताएंगे, क्योंकि भगवान अपने मुख से अपना चरित्र नहीं कहा करते। आप जैसे महापुरुष ही ये चरित्र कह सकते हैं। रामचंद्र का चरित्र हम विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। ये किस वंश में प्रकट हुए, उनका क्या बल था, क्या पराक्रम था, और ये भी बताइए कि रावण कौन था, किसका पुत्र था, और रामचंद्र जी से क्या बैर रखता था। सारी कथाएं आप कृपा करके हमको बताइए। नाम तो सुना है, कथा हम पहली बार आपके मुख से सुन रहे हैं। अब 8 दिन के मध्यम विश्राम के बाद ये कथा फिर कही जाएगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण।